ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 31 श्लोक संख्या 12। और इस अध्याय का नाम है प्रचेताओं को नारद का उपदेश। तो श्लोक यहाँ पे लिखा है, आप पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। किं वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्यायरोपि किं वा श्रेयोभिरन्तेश्च न यत्रात्मा प्रदो हरिः। किं वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयोभिरन्तेश्च न यत्रात्मा प्रदो हरिः। किं वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयोभिरन्तेश्च न यत्रात्मा प्रदो हरिः। किम, क्या लाभ, वा अथवा योगेन योग अभ्यास द्वारा, सांख्येन सांख्या दर्शन के अध्ययन से, न्यास संन्यास ग्रहण करने से, स्वाध्याययोः तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन से, अपि भी किम, क्या लाभ, वा अथवा श्रेयोभिः शुभ कर्मों द्वारा, अन्ये अन्य च तथा न कभी नहीं, यत्र जहाँ, आत्मा प्रदः आत्मा की तुष्टि, हरि ही भगवान। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जो दिव्य विधि विधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार कराने में सहायक नहीं होते वह व्यर्थ है, चाहे वह योग अभ्यास हो या पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन, कठिन तपस्या, संन्यास ग्रहण करना या वैदिक साहित्य का अध्ययन हो। भले ही ये आध्यात्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण पक्ष क्यों न हो, किंतु जब तक कोई भगवान हरि को नहीं जान लेता ये सारी विधियाँ व्यर्थ है। तात्पर्य श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, भक्ति बिना केवल ज्ञाने मुक्ति नाई हया, भक्ति साधना करे ये प्राप्त ब्रह्मालय। निर्विशेषवादी भक्ति न करके अन्य अभ्यास करते हैं, जैसे भौतिक तत्वों का विश्लेषण, पदार्थ तथा आत्मा में भेद एवं योग प्रणाली। ये तभी तक उपयोग है जब तक वे भक्ति के पूरक है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा था कि भक्ति के बिना ज्ञान योग तथा संख्या दर्शन ये वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकते। निर्विशेषवादी परम ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं, किंतु इस तादात्म्य के लिए भी भक्ति चाहिए। परमेश्वर का साक्षात्कार तीन रूपों निर्गुण ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान में होता है। इन सब के लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी मायावादी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते भी पाए जाते हैं, यद्यपि उनका लक्ष्य ब्रह्म से तादात्म्य रहना है। कभी कभी योगी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, किंतु उनका लक्ष्य भक्तों से भिन्न होता है। इन सभी विधियों में चाहे वह कर्म हो, ज्ञान हो या योग, भक्ति आवश्यक है। यही इस श्लोक का सारांश है। आइए हम कुछ चर्चा करने से पहले हमारे गुरुजन परंपरा या हमारे श्री श्री कृष्ण बलराम को हम प्रार्थना करते हैं। सभी लोग मिलकर एक ही साथ मंगलाचरण बोलेंगे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतां परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी लोग एक बार जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्रातःकालीन नित्यम भागवत सेवायम प्रोग्राम में। आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मैं इस श्लोक के ऊपर कुछ चर्चा कर सकूं। ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत विद्वान हूं, ज्ञानवान हूं या बहुत सीनियर भक्त हूं इसलिए मैं व्यासासन पर बैठा हूं, ऐसे बात नहीं है। व्यासासन पर तो इसीलिए बैठे हैं कि हमारे गुरु परंपरा के आदेश को पालन करते हुए या इस संस्था को भविष्य में हमारे ही कंधे पे आएगा तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप सभी लोग आशीर्वाद दे दीजिए। आप सभी लोग उन्नत प्रगतिशील भक्त है, धाम वास करते हैं, वृंदावन धाम में वास कर रहे हैं, आप लोग साधारण जगह पे नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर स्पष्ट बोलते हैं, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, दिव्य चिंतामणि धाम, स्पष्ट बोल रहे ये धाम जो है साधारण स्थान नहीं है। आप लोगों को महसूस हो रहा है आप चिंतामणि धाम में है बोल के, ये चिंतामणि धाम है। इसका प्रमाण आता है शास्त्र में अनेक जगह पे कि वृंदावन धाम जो है इस भौतिक संसार के भीतर नहीं है बोल के, शास्त्र में अनेक जगह पे आता है। इसमें प्रसिद्ध उदाहरण है कि जब शुक्र भगवान जब हिरण्यक्ष जब इस धरती को छुपाता है, एक बार हिरण्यक्ष ने धरती को छुपाया था तो इसी मथुरा में लाके छुपाया था, पूरे पृथ्वी को पूरे विश्व को उसने छुपाया था, जब उसने छुपाया तो मथुरा में लाके छुपाया विश्राम घाट में, है ना। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि वृंदावन धाम जो है इस भौतिक संसार में नहीं है। और इसके ऊपर भी वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करना, ये सब हम सब का बहुत ही सौभाग्य है। श्रील प्रभुपाद के ही असीम कृपा से एक तो हम वृंदावन धाम में है, दूसरा है श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम ऐसे ग्रंथ है, सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट बोलते हैं, निगम कल्पतरो गलितम फलम, कल्पतरो श्रीमद् भागवतम को भी सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ये भी एक कल्पतरु है, वृक्ष से तुलना कर रहे हैं, वृक्ष तो है लेकिन कैसे है कल्पतरु, उसमें फल कैसे है गलितम फलम, पके हुए है ना। और पके हुए फल में से भी सबसे मीठा फल कौन सा होता है, जो तोता द्वारा जिसने मुंह डाल दिया है वो सबसे मीठा होता है। तो यहाँ पे बोला है सुख मुख अमृत द्रव्यम, सुखदेव गोस्वामी द्वारा इस श्रीमद् भागवतम को बोला गया है इसलिए सबसे श्रेष्ठ है, अमृत है, इसलिए वो बोलते हैं पीबत भागवतम, पियो इसको पान करो हे भक्तगण, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करना। हमारे अनेक आचार्य इस श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका देते हैं और गुणगान गाते हैं, उनमें से सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम क्या है बोल के, सनातन गोस्वामी बोलते हैं सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो कली द्वंद्वोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। देखिए श्रीमद् भागवतम कैसे है, सर्व भागवत प्राण, दो प्रकार के भागवत होते हैं, व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत। यहाँ पे बोल रहे ये श्रीमद् भागवतम जो है सभी वैष्णव के प्राण है, सर्व भागवत प्राण, सभी व्यक्ति भागवत के प्राण है ये श्रीमद् भागवतम। देखिए ये श्रीमद् भागवत आप सभी वैष्णव के प्राण हो, क्यों क्यों प्राण हो, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ बोल रहे कली ध्वंतो उदित दत्य, क्योंकि आप इस अंधकार कलियुग में जो अंधकार से छाया हुआ है ऐसे कलियुग में आप कैसे प्रकट हुए हो, उदित ध्वंत सूर्य के समान आप प्रकट हुए हो, इसलिए आप जो है वैष्णव के प्राण हो। इतना ही नहीं श्री कृष्ण परिवर्तित, श्री कृष्ण परिवर्तित मतलब आप श्री कृष्ण ही हो, परिवर्तित मतलब श्री कृष्ण का ही दूसरा रूप। तो हे प्रभु आप श्री कृष्ण ही हो इसलिए आप वैष्णव के प्राण हो। देखिए श्रीमद् भागवतम कितना श्रेष्ठ है। और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं एक जगह पे श्रीमद् भागवतम क्या है और किसके लिए है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही प्रथम स्कंद में अध्याय दो में श्लोक संख्या चार में श्रील प्रभुपाद स्पष्ट बोल रहे हैं ये श्रीमद् भागवतम किसके लिए है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ ये तात्पर्य में प्रभुपाद बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भव बंधन से छूटने के इच्छुक है। देखिए श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है, इसमें कोई दाग नहीं है, और विशेष करके उनके लिए किसके लिए है, जो स्थायी रूप से जो हमेशा के लिए भवबंधन से छूटने के इच्छुक है। मैं इसको फिर पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। कभी कभी हम श्रीमद् भागवतम से सुनते हैं, लेकिन ऐसे होता है कि काइंड ऑफ ड्यूटी के ख़त्म करने के लिए हम आके बैठ जाते हैं। जैसे भी बैठते हैं, लाभ तो है, लेकिन अगर आप इसका पूरा लाभ लेंगे, पूरा फ़ायदा उठाएंगे, तो और लाभ हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इसको मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ। श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर रूप से समझा रहे। श्रीमद् भागवत निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भवबंधन से छूटने के इच्छुक है। देखिए कितना स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद समझा रहे। तो इसलिए हम सभी का यह बहुत ही सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करना। तो आज के श्लोक के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं, आज के अध्याय के ऊपर। तो ये स्कंद चार बहुत ही विशाल है, इसमें 31 अध्याय है, 31 अध्याय। हो सकता है आप लोगों ने इसको सालों से सुनते आ रहे होंगे 31 अध्याय को, है ना। और उसमें से भी ये जो है अंतिम अध्याय है, 31 अध्याय में से ये 31वां है और अंतिम अध्याय है, अंतिम पक्ष है। तो इसलिए आगे का थोड़ा हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो इस स्कंद में विशेष करके स्वयंभुव मनु और शतरूपा उनके वंश, उनके बारे में चर्चा किया गया है। स्वयंभुव मनु और सत्वरूप, उनके 5 संतान होते हैं, 2 पुत्र और 3 पुत्री होती है। प्रियव्रत और उत्तनपाद 2 पुत्र होते हैं और 3 पुत्री होती है, आकुति, देवहूति और प्रसूति, है ना। और इनमें से भी, इन 5 में से भी उत्तनपाद महाराज के संतान के बारे में चर्चा किया गया है, है ना। उनके 2 पुत्र होते हैं, ध्रुव और उत्तम, और उनमें से ध्रुव महाराज के वंश के बारे में चर्चा किया गया है। ध्रुव महाराज के वंश में राजा अंग आते हैं, और उनके ही पुत्र होते हैं राजा वेण। और उनके शरीर से जब मंथन किया जाता है तो पृथु और अर्ची, ये दोनों प्रकट होते हैं उनके शरीर से। और जब इनके परंपरा में फिर आते हैं विजितास्व, हम आपको बता रहे हैं कि प्रचेतास कौन है, अभी हम प्रचेता गण के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कौन है, ये स्कंद चार में क्या बताया गया, ये थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। तो पृथु और अर्ची के वंश में ये आते हैं विजितास्व, और इनके वंश में फिर आते हैं हविरधान, और हविरधान के पुत्र होते हैं प्रचेन वरिषत, है ना। ये प्रचेन वरिषत और सतद्रुति, इनके फिर इनके 10 पुत्र होते हैं, वो होते हैं प्रचेतागण। तो यही बताया गया है कि कैसे प्रचेतागण का प्रकट हुआ है। और इस स्कंद में विशेष करके आपको मिलेगा ध्रुव महाराज के लीला और पृथु महाराज की लीला, और उसके बाद प्रचेन वरिषत, और अंतिम में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रचेतागण। तो यही समराइज किया है, प्रचेतागण के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस अध्याय में, इस अध्याय 31 में 31 श्लोक है। थोड़ा भागवतम को हम कभी कभार स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ना चाहिए, कौन से स्कंद में कितने अध्याय है और कौन सा श्लोक क्या कनेक्ट है, ये सब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका हर श्लोक का कनेक्शन रहता है। तो इस अध्याय में 31 श्लोक है। 31 श्लोक में से पहले 4 श्लोक, 1 से लेकर 4 तक प्रचेतागण जो है अभी अपना राज्य घर द्वार छोड़ के बन जाते हैं, बन के और जाते हैं। देखिए 1 से लेकर 4 तक, श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक, बोलो अपने घर द्वार छोड़ के बन के और जाएंगे भक्ति करने के लिए, है ना। और जब बन के और जाते हैं तो ऐसे बताया गया है, सूरा सूर्यद्यो ददृश्य सम नारद, सूरा सूर्यद्यो ददृश्य सम नारद, उनकी जो है नारद मुनि से मुलाकात होती है। जब बन के और जाते हैं तो नारद मुनि से मिलते हैं। नारद मुनि कैसे है, यहाँ बताया गया है सूरा असुरा दयो, नारद मुनि सुर के भी मित्र है, असुर के भी मित्र है, ऐसे बताया। जैसे इसका उदाहरण आता है, नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को भी शिक्षा दिया और ध्रुव महाराज को भी शिक्षा दिया। प्रहलाद महाराज किसके वंश में थे? असुर के वंश में थे, ध्रुव महाराज सूर के वंश में थे। तो इसीलिए नारद मुनि सूर असुर दयो, सूर के भी असुर के भी मित्र है। तो जब ये प्रचेतागण वन के ओर जाते हैं तो नारद मुनि से मिलते हैं, है ना? और जब नारद मुनि से मिलते हैं तो नारद मुनि को कुछ प्रार्थना करते हैं। पूजा यित्वा यथा देशम सुखासीनम अथा ब्रुवन। पहले तो पूजा यित्वा, नारद मुनि की पूजा करते हैं, जब नारद मुनि से मिलते हैं तो उनकी पूजा होती है, और सुखासीतम सुखा उनको सुखपूर्वक आसन देते हैं, और आसन देने के बाद आप ब्रुवन कुछ बोलना प्रारंभ करते हैं। कौन बोल रहा है? ये प्रचेतागण। जब नारद मुनि से वन में मिलते हैं, जब घर छोड़ के जाते हैं, वन में मिलते हैं तो उनकी पूजा करते हैं, आसन देते हैं, उसके बाद उनको कुछ बोलते हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। ये एक से लेके चार है, और फिर श्लोक नंबर 5 से लेके 7 में आप सुन के आए हैं। वो नारद मुनि से निवेदन कर रहे हैं, हे मुनिगण, हे प्रभु, हमने भगवान का भी दर्शन किया था और उनके परम भक्त शिव जी का भी दर्शन किया था, और उनके आदेश अनुसार अभी हमने ये राज्य भी बहुत संभाल लिया, फिर भी हम सुखी नहीं है, है ना? बहुत साल तक संभाल लिया, इसलिए आप अभी हमें कुछ हमें शिक्षा दीजिए। अभी हम घर द्वार छोड़ के आए हैं। यहाँ पे बोलते हैं प्रचेतागण, एता जशा तरिश्याम दुष्टारम भव सागरम। यहाँ पे बोल रहे अंजशा, मतलब सबसे सरल मार्ग किसके लिए? तरिश्याम, तरिश्याम भव सागरम, इस भव सागर को पार करने के लिए सबसे सरल मार्ग आप हमें बताइए। देखिए प्रचेतागण कितना सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। जब हम किसी साधु के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न करना चाहिए। देखिए कितना सुंदर प्रश्न है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि दुष्टारम भव सागरम तरिश्याम। और सबसे सरल मार्ग, एक तो भव सागर को पार करना है, उसमें से भी सबसे सरल मार्ग क्या है ये आप हमें बताइए। ये 5 से लेके 7 तक श्लोक में ये प्रचेतागण बोलते हैं। जब प्रचेतागण ऐसे बोलते हैं, अब श्लोक नंबर 8 से लेके 22 तक अभी हम चर्चा कर रहे हैं, 8 से लेके 22 तक नारद मुनि जो है प्रचेतागण को शिक्षा देंगे। देखिए समझ में आ रहा है आपको, पूरा पिक्चर समझ में आ रहा होगा। श्लोक नंबर 8 से लेके 12 मतलब 14 श्लोक में बहुत ही सुंदर शिक्षा देते हैं, सीधा भक्ति के बारे में बहुत ही सुंदर शिक्षा देते हैं नारद मुनि। और विशेष करके आज के श्लोक में आप देख रहे हो कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि योगे न, ना तो योग द्वारा, सांख्य न, आज के श्लोक में श्लोक नंबर 12, ना तो सांख्य दर्शन के अध्ययन से, न्यास ना तो संन्यास ग्रहण करने से, है ना, स्वाध्याय या स्वयं स्वाध्याय अध्ययन करने से, अगर ये सब यहाँ पे बोले, अगर भगवान के दिव्य विधि विधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात करने में सहायता नहीं करते हो तो ये सब क्या है? व्यर्थ है। देखिए कितना स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, ये सब व्यर्थ है। भले हम ये सब क्यों नहीं करें, भले सन्यासी ग्रहण क्यों नहीं करें, लेकिन अगर भगवान के भक्ति में, भगवान के भक्ति के लिए नहीं है तो ये सब क्या है? व्यर्थ है। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे, जैसे बहुत ही लोगों के पास सब कुछ हो सकता है, बहुत धन दौलत गाड़ी इत्यादि सब कुछ हो सकता है, या प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण देते थे, या अनेक शून्य हो सकता है, अनेक शून्य, लेकिन उस शून्य के ऊपर सामने एक नहीं है तो उस शून्य का कुछ भी वैल्यू नहीं है, है ना? भले हजारों शून्य ही क्यों न हो, लेकिन उसके सामने एक नहीं है तो उस शून्य का वैल्यू जो है कुछ भी नहीं है। ठीक उसी तरह हम भी अन्य कार्य क्यों नहीं किए हो, लेकिन अगर भगवान के भक्ति से संबंध नहीं है, यहाँ पे बोले ये सब क्या है? व्यर्थ है। देखिए सब व्यर्थ है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी इसको स्पष्ट बोलते हैं, धर्म स्वांतिष्ट पुंसाम विश्वसेना कथा श्रुय नोत्पादय यति रतिम समय वही केवलम। देखिए विश्वासेना कथा श्रुय, अगर हमारे कार्य है, हमारे एक्टिविटीज भगवान के सेवा के लिए नहीं है, भगवान के भक्ति में संलग्न नहीं है, तो ये क्या है, शम एव ही केवलम। आज के श्लोक में भी यही बोल रहे हैं नारद मुनि, है ना। भले हम लोग बहुत साल से तो करेंगे, करते आएंगे, सो कॉल सीनियर तो बन जाएंगे, लेकिन हमारे जो है हृदय इतना पवित्र नहीं होगा, अगर हमारे कार्य भगवान से डायरेक्ट भगवान के भक्ति के लिए नहीं है, है ना। इसलिए हमारे कार्य जो है डायरेक्ट भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। आज के श्लोक में यही बोल रहे हैं कि भगवान के भक्ति के लिए होना चाहिए। इसी बात को शौनकादि भी शुरू शुरू में पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी शुद्ध गोस्वामी से, जो छः श्लोक है उनमें से एक श्लोक है, पुंसाम एकांत श्रेय, मनुष्य के लिए सबसे उत्तम कार्य क्या है, पुंसाम एकांत श्रेय, है ना। ये छः प्रश्न में से एक है। तो उस समय शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम कार्य क्या है, सवे पुंसो परो धर्मो यतोर भक्ति रदोक्षजे अहेतु के अप्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्धति। देखिए मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है, आप सबको पता है ये श्लोक प्रसिद्ध श्लोक है। यहाँ पे बोल रहे हैं सवे पुंसो परह धर्म, सब मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है, यतोर भक्तिर अधोक्षजे, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, भगवान अधोक्ष की भक्ति करना, है ना, स्पष्ट बोल रहे। जब तक हाँ भगवान के भक्ति में डायरेक्ट एंगेज नहीं होंगे, आपका शुरू शुरू में इनडायरेक्टली हो सकते हैं, लेकिन जब हम प्रगतिशील होते हैं तो जब तक भगवान की सेवा में डायरेक्ट नहीं आते हैं तब तक हम प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकती है, है ना। लेकिन जब ये करेंगे यथोर भक्ति अधोक्षजे तो क्या होगा, यत्मा सुप्रसिद्धति, हमारी आत्मा प्रसन्न होगी, स्पष्ट बोल रहे। तो यहाँ पे शौनकादि दो चीज बोल रहे हैं, अहेतु की अप्रतिहता, ये बहुत ही सुंदर है, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति। भगवान भी गीता में यही दो बात बोलते हैं, सेम चीज अहेतु की अप्रतिहता, दूसरे थोड़ा शब्द बदल के बोलते हैं, लेकिन यही दो बात को भगवान बोलते हैं गीता में। भगवान बोलते हैं यही दो बात को कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयन्ति ते। देखिए सततम तेषाम सततम और प्रीतिपूर्वकम, आप समझ रहे हो अहेतु की अप्रतिहता और सततम प्रीतिपूर्वकम, दो बात सेम है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं भक्ति कैसे करो, सततम प्रीतिपूर्वकम, ऐसे भक्ति। कभी कभार हम लोग बोल सकते हैं हम तो सालों साल से भक्ति कर रहे हैं, है ना, और सारे कार्यक्रम भी कर रहे हैं, समाधि आर से लेके प्रसादम तक 6 घंटा हम पूरा रहते हैं, फिर भी इतना चेंजेस नहीं हो रहा है, हमारे हृदय जो है नहीं बदल रहा है। इसमें कमी इसीलिए हो सकता है कि हमारा जो है शायद अहेतु की रूप से नहीं कर रहे हैं, या तो प्रीतिपूर्वकम से हम नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे भगवान बोले सबसे पहले तो अहेतु की कंस्टेंटली लगातार भक्ति करना है, 1 साल 2 साल नहीं है, 5 साल नहीं है, 10 साल नहीं है, जब तक हमारा प्राण है तब तक भक्ति करना है अहेतु की, सततम, भगवान दोनों सततम ऐसे भक्ति करना है ना। हमारे आचार्य लोग उदाहरण देते हैं सततम मतलब कैसे सततम, कभी का प्रश्न आता है कितना सततम करना है, तो आचार्य लोग इसमें टीका देते हैं इतना सततम करना चाहिए जैसे गंगा जी गंगोत्री से बहती है, तो ऐसे तो नहीं हरिद्वार में कुछ क्षण के लिए रोकती है या इलाहाबाद में कुछ क्षण के लिए रोकती है, ऐसे तो नहीं होती है, है ना। सीधा जब भगवान के चरण से बहती है, गंगोत्री से बहती है, सीधा कहाँ तक चलती है, समुद्र तक, है ना। उसी तरह हमारी भक्ति भी सततम होना चाहिए, कंस्टेंटली, लगातार, है ना। और भगवान आगे बोलते हैं सिर्फ सततम भी सफिशिएंट नहीं है, है ना। कभी कभी आप, जैसे मैं बता रहा था, मैं तो सततम रोज कर रहा हूँ, एवरी डे निरंतर कर ही रहा हूँ, फिर भी कुछ बदल नहीं रहा हृदय। तो भगवान बोलते हैं सततम तो करना है, साथ साथ कैसे करना है, प्रीतिपूर्वकम, है ना, अप्रतिहता या अहेतुकी, अहेतुकी या प्रीतिपूर्वकम, अहेतुकी प्रीतिपूर्वकम। हमारे भक्ति में हेतु नहीं होनी चाहिए, ये बता रहे हैं भगवान, अहेतुकी। कभी कभी हम देखते हैं कि जब भक्ति तो करते हैं लेकिन उसके पीछे बहुत हेतु या रहती है, है ना। किसी किसी का हेतु रहता है कि इस डिपार्टमेंट का हेड बनने का, है ना। किसी का हेतु रहता है पुजारी सीखना है, किसी का हेतु रहता है कि कुछ विदेश जाने के लिए पासपोर्ट के लिए कुछ होता है। ये सब हेतु या आप देखिए, पुजारी सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे हेतु ये होना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, है ना। अगर हम भगवान के प्रसन्नता के लिए नहीं होगा, सिर्फ अपने हेतु के लिए करेंगे, फिर तो बहु जन्म करी श्रवण कीर्तन तब तन पाई कृष्ण प्रेम धन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि भक्ति अहेतु की अप्रतिहताम सततम प्रीतिपूर्वकम। प्रीतिपूर्वकम के बारे में एक उदाहरण याद आ रहा था कि जब प्रभुपा जी राधा दामोदर मंदिर में थे विदेश जाने से पहले, तो उस समय प्रभुपा जी विदेश नहीं गए थे, राधा दामोदर मंदिर में थे। एक माता जी थी उस मंदिर में, एक माता जी थी, वो क्या करती थी, रोज यमुना जी जाती थी सुबह सुबह, गर्मी हो या ठंडी हो, दिसंबर जनवरी के सीज़न में भी रोज प्रातःकालीन उठ के यमुना जी जाती थी, स्नान करके राधा दामोदर के लिए अभिषेक के लिए जल लेके आती थी। देखिए, उनको वहाँ पे कोई नहीं दिख रहा था, उनका नाम अनाउंस नहीं हो रहा था, है ना, उनको कोई नोटिस नहीं कर रहा था ये क्या सेवा कर रही है, क्या है, उनके पीछे कोई नहीं पड़ रहा था, फिर भी वो निरंतर कर रही थी। ये प्रभुपाद बताते हैं ये स्टोरी, निरंतर एवरी डे लगातार कर रही थी। तो भक्ति जो है ऐसी होनी चाहिए, अप्रतिहताम या अहेतुकी। तो हम लोग भी प्रयास कर सकते हैं कि इसको करने के लिए। कभी कभार भक्त लोग बोलते हैं बोलने में तो सरल है, हाँ सरल तो है, लेकिन प्रयास करने से हो सकता है, है ना। तो ऐसे करके हम भगवान कृष्ण के शरण में जाएंगे तो भगवान जरूर हमारे भक्ति को स्वीकार करेंगे निश्चित रूप से, है ना। यहाँ पे नारद मुनि यही बोल रहे हैं कि प्रत्यचागण को कि कृष्ण के शरण लो। कृष्ण कैसे है, पूर्ण है, ऐसे बताया गया, कृष्ण पूर्ण है इसीलिए उनके शरण लो, उनके शरण में जाओ। हम शरण तो बहुत लोगों के शरण ले सकते हैं, पत्नी जो है पति के शरण ले सकते हैं, और सर्वेंट जो है बॉस के शरण ले सकता है, ऐसे शरण लेने के लिए तो बहुत लोग हैं। लेकिन यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं कृष्ण का शरण लो। कृष्ण कैसे है, पूर्ण है, कृष्ण के शरीर दिव्य है, उनके अंग दिव्य है, उनके हर कार्य दिव्य है, इसीलिए उनके शरीर, उनका जो है आश्रय लो, उनका कार्य जो है शाश्वत है। ऐसे हमारे ईशोपनिषद में बताया गया है कृष्ण कैसे है, अस्नाविरम शुद्धम अपाप वृद्धम। अस्नाविरम, कृष्ण के शरीर में कोई नर्व्स नहीं है, वेंस नहीं है, उनका शरीर कैसे है, शुद्धम अपाप वृद्धम, शुद्धम अपाप वृद्धम, दिव्य है, इसलिए उनका आश्रय लेना चाहिए, है ना। कृष्ण पूर्ण है इसीलिए जो उनके द्वारा भक्ति जो करते हैं और जो भक्ति द्वारा जो फल प्राप्त होता है वो भी पूर्ण रहता है, शाश्वत रहता है। इसलिए आचार्य गण बोलते हैं कि कृष्ण की शरण लो। ऐसे बताते हैं कि कृष्ण के गुण जो है हर कार्य मधुर है। तो चैतन्य चरितामृत में आता है कि कृष्ण कैसे मधुर है, कृष्ण के कार्य जो है कैसे मधुर है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन आते हैं वृंदावन यात्रा के लिए, महाप्रभु वृंदावन यात्रा करते हैं, तो उस समय महाप्रभु आ रहे वृंदावन, बापू जंगल को पार करके आते हैं, झारखंड जंगल को, है ना। तो जब महाप्रभु आ रहे होते हैं तो उस समय महाप्रभु को एक दृष्टि दिखाई देती है जंगल में। एक दृष्टि, क्या दृष्टि दिखाई देती है, अभी बताया गया है, वृक्ष वाले शुक साड़ी दिला दर्शन, तहा देखे प्रभु र किछु सुनित हेला मन। देखिए जब महाप्रभु चल रहे हैं तो वृक्ष के ऊपर शुक और साड़ी यानी तोता और मैना कुछ चर्चा कर रहे हैं। महाप्रभु को दृष्टि दिखाई दी, देखिए जब महाप्रभु ने वो देखे तो उनकी इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई, शुक साड़ी का प्रभु रहता है पड़ी ताहे उड़ी पड़े प्रभु के सुनाया कृष्ण र गुण श्लोक श्लोक पड़े। जब वो लोग बात कर रहे थे शुक और साड़ी तो महाप्रभु की इच्छा हुई, ये लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, अगर मैं भी सुन पाता तो अच्छा होता, है ना। महाप्रभु ऐसे सोच रहे थे तो उसी समय ये तोता और मैना क्या किया, महाप्रभु के हाथ के ऊपर आके बैठ गए। देखिए एक दाएं हाथ पे एक बाएं हाथ पे बैठ गए, अब बैठ के अभी चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं, तोता जो है कृष्ण का गुण गा रहे है, वो कृष्ण के साइड में है, और मैना जो है राधा रानी के साइड में है। देखिए ये तोता बोलता है कि कृष्ण श्रेष्ठ है, मेरे कृष्ण बहुत महान है, गुणवान है, चरित्रवान है, तुम्हें पता है। लेकिन मैना बोलती है नहीं नहीं नहीं, मेरे राधा रानी तो और श्रेष्ठ है। देखिए कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं इसके ऊपर, तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहे हैं, तोता बोल रहे हैं कृष्ण कैसे है, बंशीधारे जगन्नारे चित्तहारे सशाड़ी के बिहारे गोपनारे विजिता मदन मोहन। देखिए तोता बोल रहा कृष्ण कैसे है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि साड़ी के, हे साड़ी के तुम्हें पता है मेरे कृष्ण कैसे है, हाउ इज माय कृष्ण, हाउ ब्यूटिफुल इज ही, मेरे कृष्ण कैसे है, बोले वंशीधारी, वंशी धारण करते हैं मेरे कृष्ण हमेशा, है ना, वंशीधारी। और इतना ही नहीं आगे बोलते हैं, जगन्नारी चित्तहारी, जितने भी जगत के नारी है उन सब के चित्त को हरण करने वाले भी मेरे ही कृष्ण है, तुम्हें पता है। देखिए वंशीधारी जगन्नारी चित्तहारी स साड़ी के, हे सारी के तुम्हें पता है मेरे कृष्ण जो है वंशीधारी है, जगन नारी है। और इतना ही नहीं आगे क्या है, बिहारी गोपनारी, और वृंदावन के ब्रज के गोपियों के साथ लीला करने वाले भी मेरे ही कृष्ण है, गोपी जन बल्लभ भी मेरे ही कृष्ण है। देखिए कैसे बोले कृष्ण कैसे मधुर है, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और अंतिम में बोलते हैं मेरे कृष्ण कैसे है, बिजी मदन मोहन, जो मदन मोहन मतलब जो कामदेव को भी जीत लेते हैं मेरे कृष्ण, ऐसे कामदेव की उनके अधीन में है मेरे कृष्ण, वैसे है तुम्हें पता है। जब ये मैना को सुनाई देता है, सुनती है वो, तो क्या बोलती है, ठीक है तुम्हारे कृष्ण तो ऐसे है ऐसे है, लेकिन तुम्हें पता है मेरे राधा रानी कैसी है, तुम बोल रहे हो तुम्हारे कृष्ण जो है मदन मोहन है, अब सुनो मेरे राधा रानी कैसी है, है ना। तो अब मैना बोलती है राधा रानी कैसी है, श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर्तन गान चातुरी गुणाली सप्तम कविता च राधते जगन मोहन चित्त मोहिनी। देखिए यहाँ पे मैना बोल रही है राधा रानी कैसी है, श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता, उनका स्वरूप जो है प्रियता, सब राधा रानी के स्वरूप से आकर्षित होते हैं, प्रियता स्वरूपता। देखिए और इतना ही नहीं है, सुशीलता, मेरी राधा रानी जो है बहुत ही सुशील है, गुड बिहेवियर, इंग्लिश में बोलते हैं गुड बिहेवियर, सुशील है, है ना। और आगे बोलते हैं नर्तन गान चातुरी, नर्तन गाना, गाने में और नाचने में चतुर है, मतलब एक्सपर्ट है गाने में नाचने में, राधा रानी ऐसी है। और गुणाली संपत, और उनके शरीर में गुण से भरा है, सभी गुण से भरा है, है ना। राजते, आगे बोले इतना गुण से भरने के बाद भी कैसी है राधा रानी, शर्माती है। राजते मतलब वो शर्माती भी है, देखिए। और इतना ही नहीं, अंतिम में बोलती है, मैना बोलती है, तुम बोल रहे हो तुम्हारे कृष्ण जो है मदन मोहन है, लेकिन सुनो मेरे राधा रानी कैसी है। यहाँ पे बोल रहे हैं जगन मोहन चित्त मोहिनी, देखिए तुम्हारे कृष्ण मदन मोहन है ना, लेकिन मेरे राधा रानी मदन मोहन के भी चित्त को मोहन करने वाली है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं मदन मोहन मोहिनी, मेरे राधा रानी ऐसी है। तो ये वार्तालाप करते हैं राधा कृष्ण, कृष्ण कैसे मधुर है, कृष्ण कैसे गुणवान है, दिव्य है, इसलिए हमें कृष्ण के शरण लेना चाहिए। यहाँ पे नारद मुनि यही बोल रहे हैं प्रचेतागण को कि भक्ति ही सर्व सबसे श्रेष्ठ है, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति, और कृष्ण के शरण लेना चाहिए, वो गुणवान है, चरित्रवान है, सर्वश्रेष्ठ है, और उनके हम चरण लेने से, उनके चरण के आश्रय लेने से हम भी जो है शाश्वत गुण को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चर्चा करने के लिए बहुत है, समय हो गया है, प्रसाद यहाँ पे होता है, तो आप सभी का श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष करके सभी वरिष्ठ भक्तों का। तो मुझे ऐसे आशीर्वाद दे दीजिए, और कुछ गलती त्रुटि हो गया तो क्षमा कर दीजिए, और किसी का कुछ कमेंट है, कुछ टीका है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी का कुछ टीका है, ठीक कुछ बोल रहे, ठीक है। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम के निताय गौर प्रेमानंदे।